الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا علما. تو سورۃ النمل کی آیات ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے تھے ترجمے کے ساتھ، اور آج ہم نے ان کی خلاصہ تفسیر پڑھنی ہے، پھر معروف مسائل بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. تو آیات نمبر تھیں 60 سے 64. مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ تو ان کی تفسیر میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پچھلی آیت کے آخر میں فرمایا تھا اللہ خیر اما یشرکون، ٹھیک ہے، یعنی جو پچھلے 60 سے پچھلی والی جو آیت تھی، تو ان میں یہ آیت آئی تھی کہ کیا، یعنی کیا اللہ بہتر ہے یا وہ بت وغیرہ جن کو یہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو وغیرہ کا لفظ ہے نا اردو زبان میں، تو ہم اس کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اس کا مطلب نہیں پتا وغیرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وغیرہ کا لفظ جو ہے یہ اصل میں عربی کے 3 الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، پہلا تو ہے واو، یعنی اینڈ، اور، ٹھیک ہے نا، اردو والا اور. پھر اس کے بعد ہے غیرہ، اور اس کے بعد ہے ہو. غیرہ ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی بت اور بتوں کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں جن کو ہم معبود ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اردو والا وغیرہ وغیرہ سے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا نا، عربی والے وغیرہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ صرف بتوں کو ہم شریک نہیں ٹھہراتے اللہ کے ساتھ، بلکہ بتوں کے علاوہ بھی ایک لمبی لسٹ ہے چیزوں کی کہ جن کو کہ ہم اللہ تعالی کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ ہم بتوں کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اپنی جاب کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اپنے جو ہے وہ چودھریوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اپنے جو ہے وہ سیاسی لیڈروں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اپنے ماں باپ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اپنی اولاد کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر کے خود اپنے نفس کو اللہ تعالی کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اب انشاءاللہ وغیرہ وغیرہ جو ہے وہ آپ کو امید ہے کہ یاد رہے گا کہ یہ وغیرہ وغیرہ اتنا لائٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یا وہ بت وغیرہ ہو جن کو یہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں. یہ مشرکین کی بے وقوفی، یعنی جو بھی شرک کرنے والا ہوتا ہے اس کی بے وقوفی، بلکہ کچھ فہمی پر نکیر تھی. ٹھیک ہے، بے وقوفی تو یعنی ٹھہرنا نہ ہونا ان کے اندر جو ہے نا ٹھہراؤ کا نہ ہونا. بے وقوفی کا لفظ بھی کہاں سے نکلا؟ وقفہ یقفو، اور وقوف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرنا، سیٹلڈ، ہے نا، جمنا. اور بے وقوفی یعنی ان میں کوئی ٹھہراؤ نہیں ہے، ان میں کوئی یکسوئی نہیں ہے، ان میں کوئی استقلال نہیں ہے، سٹیڈ فاسٹس نہیں ہے، بلکہ یہ منتشر لوگ ہیں، یہ ڈسپرس لوگ ہیں، یہ ڈس اورینٹڈ لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ ڈس اورینٹڈ لوگ ہیں، ان کا کوئی یعنی ان کے اندر کچھ نہیں ہے، سبسٹنس نہیں ہے ان کے اندر، ہلکے ہیں، فٹ بال کی طرح سے خالی ہیں، فٹ بال کی طرح سے خالی ہیں. کیونکہ اگر فٹ بال بھری بھی ہوتی نا تو کوئی اس کو کک نہیں مار سکتا، فٹ بال کو کوئی کک نہیں مار سکتا اگر فٹ بال کے اندر آپ بھر دیں کسی وزن کو. ٹھیک ہے نا، خالی ہے جبھی تو لوگ اس کو کک مارتے رہتے ہیں. اسی وجہ سے جو انسان خالی ہوتا ہے نا وہ بے وقوف ہوتا ہے، اس کو لوگ کک مارتے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ خالی ہے، اس کے اندر ٹھہراؤ ہے ہی نہیں. وزن ہوتا تو ٹھہراؤ ہوتا، اگر ٹھہراؤ ہوتا تو بے وقوف نہیں ہوتا بلکہ وقوف ہوتا. ٹھیک ہے نا، बेवकूफ़ी का भी इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से आपको मतलब सुनने को मिल गया, वरना इस फकीर ने आज तक तो खुद भी नहीं सोचा था इसके ऊपर कि बेवकूफ़ी का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो बेवकूफ़ी और कुछ फहमी, कुछ का मतलब होता है टेढ़ा, ठीक है ना, कुजी, टेढ़ापन, और फहम जो है वो अंडरस्टैंडिंग को कहते हैं, समझ को कहते हैं। तो टेढ़ी समझ, टेढ़ी समझ यानी जो समझ होनी चाहिए ना वो नहीं, बल्कि कुछ और ही उल्टा सीधा उठा करके उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाया हुआ है। तो मुशरिकीन जो है ना वो बेवकूफ भी होते हैं और कुछ फहम भी होते हैं, तो उसके ऊपर नकीर है यानी उसके ऊपर उनको उनका इनकार किया जा रहा है, उनका रद्द किया जा रहा है। ठीक है, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। आगे तौहीद के दलाइल का बयान है, ठीक है, जो ये जो आयत हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी ये तौहीद के दलाइल की आयत थी कि ए लोगों ये बतलाओ कि वो जात बेहतर है कि जिसने आसमान और जमीन को बनाया और उसने आसमान से पानी बरसाया फिर उसके जरिए हमने रौनकदार बाग उगाए, वरना तुमसे तो मुमकिन नहीं था कि तुम इन बागों के दरख्तों को उगा सको। है ना भाई, कोई किसान जो है या कोई बागबान कोई जमीन से जो है वो खींचता है दरख्त को, खींच करके बाहर निकालता है बीज के अंदर से, और फिर उसको जो है वो जिस तरह कुम्हार होता है, कुम्हार राइट, जो क्या कहते हैं उसको, कुम्हार को क्या कहते हैं, बहरहाल मिट्टी की चीज होता है ना, तो उसको वो बना रहा होता है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे उसको पतला करता है, घुमाता है, ये करता है, फिर वो जो है ना वो पतली होती है, फिर वो लंबी होती है, फिर उसको चौड़ा भी बना देता है, ये कर देता है, ठीक है ना। तो क्या हम दरख्तों को ऐसे उगाते हैं? फखार, फखार कहाँ से आ गया, मैं आपसे अंग्रेजी का लफ्ज पूछ रहा था एक्चुअली, कुम्हार के लिए अंग्रेजी क्या क्या लफ्ज था। बहरहाल तो वो तो इस तरह हम दरख्तों को ऐसे करते हैं, ठीक है, इतने बड़े बड़े जो दरख्त उगाते हैं उनके अंदर से फल निकल आते हैं, अजीब, ठीक है ना, ये हमारे बस में तो नहीं है। तो तुम्हारे बस में तो नहीं था कि तुम बागों के दरख्तों को उगा सको। पॉटर, जजाकअल्लाह, ठीक है, तो पॉटर को भी लफ्ज है, चले। तो ये सुनकर अब बतलाओ कि क्या अल्लाह के साथ शरीक इबादत होने के लायक कोई और माबूद है? अल्लाह कोई और माबूद है, मगर मुश्रिकीन फिर भी नहीं मानते, ठीक है ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो गोया के मतलब अल्लाह की शान तो इतना बड़ा होता है ना, तो फिर उस वो फिर बड़ों के जैसे रिएक्ट एक्ट करता है, लेकिन छोटा से जो है ना वो छोटों के लेवल के ऊपर बात कर रहा होता है, ठीक है। तो अब जो है वो बंदे और अल्लाह के दरमियान क्या मुनासबत, वो खालिक है, ये मखलूक है, और मखलूक में से भी सबसे कमजोर मखलूक, मखलूक भी कैसी, सबसे कमजोर मखलूक, ठीक है ना, क्योंकि दूसरी मखलूकात को तो मरते मरते बड़ी मुश्किल लगती है, बड़े सॉलिड किस्म के उनके बदन होते हैं, बड़ा उनका यानी उनकी पावर होती है, और इंसान तो ऐसा है कि कोरोना वायरस राइट, कोरोना वायरस ही काफी उसके लिए दुनिया से उसको छुट्टी छुट्टी करा देने के लिए, एक वायरस ही काफी है ना, एक बैक्टीरिया भी जो है वो भी फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो उससे भी जो है ना उसकी छुट्टी हो जाती है, ठीक है ना, उसको कोई बहुत बड़े जलजले की जरूरत तो नहीं है इंसान को मरने के लिए, कोई बहुत बड़े जो है वो एटम बम की जरूरत तो नहीं है एक बंदे को मारने के लिए, ठीक है। तो अल्लाह ताला जो है वो इस बंदे के लेवल के ऊपर आकर के कैसे बात को मारे हैं कि क्या कोई है मेरे जैसा तुम्हारे पास नहीं, लेकिन ये लोग फिर भी नहीं मानते, ठीक है ना, क्योंकि इनके अंदर जो नफ्स है ना वो नफ्स जो है वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, तो वो नहीं मानता असल में। तो कहते हैं कि बल्कि ये ऐसे लोग हैं कि दूसरों को खुदा के बराबर ठहराते हैं, हालांकि अल्लाह ताला ने दूसरी चीजों को इनकी खिदमत पे लगाया था, यही तो असल चीज है। असल में जो तौहीद जो जो शिर्क के अंदर जो जो नजासत है ना शिर्क के अंदर, वो ये है कि जिनको अल्लाह ताला ने इंसान से कमतर बनाया था, इंसान की खिदमत के ऊपर मामूर किया था, उनको इंसान ने अपने मखदूम के बराबर लाके खड़ा कर दिया। मखदूम, मखदूम वो होता है कि जिसकी खिदमत करनी होती है, और खादिम वो होता है कि जिसने खिदमत करनी होती है। तो अल्लाह ताला ने तो ये सारा का सारा जो जहान था ये हमारी खिदमत के लिए बनाया था, जिसको कि अल्लाह ताला हुक्म देता है वो हमारी खिदमत करते हैं, वरना हमारी यानी वो हमारी अकल से तो हमारी खिदमत नहीं करते ना कि हम उनको खिदमत में मामूर करते हैं, अल्लाह ताला उनको हमारी खिदमत के ऊपर मामूर करते हैं, तो वो हमारी खिदमत करते हैं। जब भी तो हम गाड़ी में बैठते हैं, खच्चर पे बैठते हैं, घोड़े पे बैठते हैं, तो क्या दुआ पढ़, क्या दुआ मांगनी होती है, सुभानल्लज़ी सख्खरा लना, तमाम पाकी उसके लिए है, उस जात के लिए है कि जिसने सख्खरा मुसख्खर कर दिया हमारे लिए, سخر لنا هذا, اس سواری کو, اس گاڑی کو, اس جہاز کو, ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ مسخر کرتا ہے, تو پھر یہ درخت بھی ہماری خدمت کے لیے ہو جاتے ہیں, یہ چرند پرند بھی ہماری خدمت کے لیے ہو جاتے ہیں, یہ کھیت کھلیان بھی ہماری خدمت کے لیے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور انسان ان کو اٹھا کر کے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتا, یعنی اس سے بڑا آفینس, اس سے بڑی جو ہے نا نعوذ باللہ تذلیل کی ناکام کوشش اور نہیں ہو سکتی, ہے نا. اللہ تعالی کے ساتھ اس سے زیادہ بڑا جو ہے نا آفینس انسان نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. اسی وجہ سے شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا, باقی ساری چیزیں معاف کر سکتا ہوں, اس کو نہیں معاف کروں گا, ٹھیک ہے. تم 100 بندہ مار دو, تم 10,000 بندہ مار دو, ٹھیک ہے نا, میں معاف کر دوں گا تمہیں. 10,000 بندہ بھی مارنے کے اوپر میں تمہیں معاف کر دوں گا, لیکن شرک کے اوپر میں تمہیں معاف نہیں کروں, ٹھیک ہے. ہمارے نزدیک بندہ مارنا زیادہ بڑا جرم ہے, ٹھیک ہے, لیکن اللہ کے نزدیک بندہ مارنا زیادہ بڑا جرم نہیں ہے, شرک زیادہ بڑا جرم ہے, ٹھیک ہے نا. اب ہم ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہماری اسٹینڈرڈ زیادہ امپورٹنٹ ہیں کہ اللہ کے اسٹینڈرڈ زیادہ امپورٹنٹ ہیں, ٹھیک ہے. تو آگے فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ دوسروں کو خدا کے برابر ٹھہراتے ہیں. اچھا پھر اور کمالات سن کر بتلاؤ کہ یہ, یعنی یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں نا بریکٹس کے اندر, جو تفسیر ہے چھوٹی چھوٹی تفسیر, کہ یہ بت بہتر ہیں یا وہ ذات جس نے زمین کی مخلوق, زمین کو مخلوق کی قرارگاہ بنایا, رہنے کے رہنے کا ٹھکانہ بنایا زمین کو, اور اس کے درمیان نہریں بنا دی, ٹھیک ہے, بیچ بیچ میں جو ہے وہ واٹر ویز بنا دیے, اور اس زمین کے ٹھہرانے کے لیے پہاڑ بنائے, رواسیا, ٹھیک ہے نا. تمد کیا ہے حافظ صاحب, اگر کوئی ہیں تمدو, تو مطلب زمین کو جو ہے نا وہ پہاڑ روک کر کے رکھتے ہیں, اب تو ماشاء اللہ سب کو پتا ہوگا. اور دو دریاؤں کے درمیان حد فاصل بنائی, ٹھیک ہے, یعنی ایک تو وہ دریا خود جو ہے وہ آپس میں گڑبڑ نہیں ہوتے, دوسرے کہ اگر زمین کو بھی بیچ میں حد فاصل کے طور پہ رکھ دیا دو دریاؤں کے درمیان, جیسے کہ سورہ فرقان میں مرج البحرین اور سورہ رحمان وغیرہ کے اندر التقیان وغیرہ جو ہے تو بات ہو چکی ہے جمعے کے اندر, ترجمے کے دوران. یہ سن کر اب بتلاؤ کہ کیا اللہ کے ساتھ خدائی کا شریک ہونے کے لائق کوئی اور معبود ہے. دوسری مرتبہ فرما رہے ہیں اَإِلَاهُمْ مَعَ اللَّهُ, مگر مشرکین نہیں مانتے, بلکہ ان میں زیادہ تو اچھی طرح سمجھتے بھی نہیں, ٹھیک ہے نا. یعنی آگے معروف مسائل میں اس کے اوپر بات کریں گے, اچھی طرح سمجھتے بھی نہیں ہیں. اچھا پھر اور کمالات سن کر بتلاؤ کہ یہ بت بہتر ہیں یا وہ ذات جو بے قرار آدمی کی دعا سنتا ہے. اب میں مجیب المضطر اذا دعا, مضطر کی دعا سنتا ہے جب وہ اس کو پکارتا ہے, وہ یکشف السوء, جب وہ اس کو پکارتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے, یکشف السوء مصیبت کو دور کرتا ہے اور تم کو زمین میں صاحب تصرف بناتا ہے. یہ سن کر اب بتلاؤ کہ کیا اللہ کے ساتھ شریک عبادت ہونے کے لائق کوئی اور معبود ہے. پھر تیسری مرتبہ فرما رہے ہیں اَإِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ, مگر تم لوگ بہت ہی کم یاد رکھتے ہو. اچھا پھر اور کمالات سن کر بتلاؤ کہ یہ بت بہتر ہیں یا وہ ذات جو تم کو خشکی اور دریا کی تاریکیوں میں رستہ سجھاتا ہے اور جو ہواؤں کو بارش سے پہلے بھیجتا ہے, جو بارش کی امید دلا کر دلوں کو خوش کر دیتی ہے. جو ہوائیں پہلے آتی ہیں پھر اس کے بعد پھر بارش کے بادل آتے ہیں, تو یہ ہوائیں بتا دیتی ہیں کہ ہاں بھی بارش ہونے والی ہے, تو انسان خوش ہو جاتا ہے. گرمی کے موسم کے بعد جب اس طرح کی ہوائیں چلتی ہیں تو انسان خوش ہو جاتا ہے. یہ سن کر اب بتلاؤ کہ کیا اللہ کے ساتھ شریک عبادت ہونے کے لائق کوئی اور معبود ہے. چوتھی مرتبہ اَإِلَاهُمْ مَعَ اللَّهِ, ہرگز نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے برتر ہے. اچھا پھر دوسرے کمالات سن کر بتلاؤ کہ یہ بت بہتر ہیں आजिस भी म्यूट हो गया था। अच्छा, तो ये जो एक जुमला अभी पढ़ा था शायद उस वक्त म्यूटेड था कि कोई और माबूद है हरगिज नहीं बल्कि अल्लाह ताला उनके शर्क से बरतर है। और फिर आखिरी क्या फरमा रहे हैं कि या वो जात जो मखलूकात को अव्वल बार पैदा करता है या फिर उसको दोबारा पैदा कर देगा और जो आसमान और जमीन से पानी बरसाकर और नबातात निकालकर तुमको रिस्क देता है। ये सुनकर अब बतलाओ कि क्या अल्लाह के साथ शरीक इबादत होने के लायक कोई और माबूद है। ये जो गैरहू को तुम अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराते रहते हो कि अल्लाह का हुक्म छोड़ करके तुम उनका हुक्म मान लेते हो, अल्लाह का हुक्म तोड़ करके तुम उनकी खातिर जो है ना वो नमाज छोड़ देते हो, इनकी खातिर जो है वो फराइज को छोड़ देते हो, इनकी खातिर जो है वो पर्दा छोड़ देते हो या अपनी औरतों को जो है वो पर्दा करने से मना कर देते हो, मखलूक की खातिर, मखलूक की खुशी की खातिर तुम अल्लाह के हुक्म को तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो, तो क्या कोई क्या इस काबिल है ये लोग कि तुम इनकी वजह से जो है वो अल्लाह ताला का हुक्म तोड़ते हो। अल्लाह तो 5 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना वो इन आयात में हमें ये बातें याद दिला रही। अब अल्लाह ताला यानी इसको कहते हैं हुज्जत पूरी हो जाना ना। अब तो हमारे ऊपर हुज्जत तमाम हो चुकी है, तमाम तो पहली हो चुकी थी क्योंकि कुरान तो हमें विरसे में मिला है, पैदाइशी तौर पर कुरान हमें मिला हुआ है, लेकिन आज तो पढ़ भी लिया और आज से पिछली वाली क्लास के अंदर भी पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये शिर्क जो है ना जो हम करते फिर रहे हैं ना कि अल्लाह की इबादत में दूसरों को शरीक करना, और इबादत का मतलब नमाज के ऊपर टक्कर मारना खाली नहीं होता, ठीक है ना, जिसको कि हमने इबादत में महसूर इबादत को उसके अंदर महसूर कर दिया ना और हम बड़े खुश हैं कि हम नमाज में तो सामने बुत नहीं रखते, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्या अल्लाह के साथ शरीक इबादत होने के लायक कोई और माबूद है? और अगर वो ये सुनकर भी कहें कि हाँ और माबूद भी मुस्तहिक इबादत हैं तो आप कह दीजिए कि अच्छा तुम उनके इस्तेकात इबादत पर यानी उनका जो तुमने हक इबादत समझा हुआ है तुम उसके ऊपर अपनी दलील पेश करो अगर तुम इस दावे में सच्चे हो। ठीक है, तुम दलील क्या पेश करेंगे? मेरा तेरा दिल तो है सना माशना, मेरा यानी अपना दिल ही पेश करेंगे, बस मेरा नफ्स चाहता है कि जी मैं इनकी बात मानूं, असल में तो कोई दलील है नहीं, बस ये कहते हैं भाई उनको भी तो खुश रखना है ना, ऐसी हमारे पास दलीलें होती हैं, आखिर को उनका भी तो दिल रखना है ना, आखिर को उनकी भी तो बात माननी है ना, और फिर साथ साथ जो है वो अपनी जहालत की वजह से यहाँ तक कह देते हैं कि हमारा दीन भी तो यही कहता है ना, है ना, हमारा दीन क्या कहता है, अम्मा अब्बा को खुश करो अल्लाह को नाराज करके, हरगिज हरगिज हमारा दीन ये नहीं कहता, ये तुम्हारा बनाया हुआ दीन होगा, अल्लाह का दीन तो ये नहीं कहता। ठीक है, अल्लाह की रजा के साथ माँ बाप की रजा जो है ना ये हमारा दीन कहता है, लेकिन ये कहाँ से आ गया? मआरिफ व मसाइल, अम्मन युजीबुल मुद्दर इज़ा दाअहु व यकशिफु सू। तो इसके अंदर जो अल मुद्दर का लफ्ज है वो इज़्तिरार से मुश्तक है कि किसी जरूरत से मजबूर व बेकरार होने को इज़्तिरार कहा जाता है, और वो जब ही होता है कि जब उसका कोई यार मददगार और सहारा ना हो। मुज़्तर इंसान उस वक्त होता है कि जब सारे सहारे जो है ना वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, सारे झूठे सहारे थे या सच्चे सहारे थे, जो भी सहारे थे सारे के सारे खत्म हो गए ना, उस वक्त इंसान का दिल जो है ना वो मुज़्तर होता है। इसलिए फरमाया कि इसलिए मुज़्तर वो शख्स है तो जो सब दुनिया के सहारों से मायूस होकर खालिस अल्लाह ताला ही को फरियाद रस समझ कर, फरियाद रस यानी फरियाद सुनने वाला समझ कर उसकी तरफ मुतवज्जे, हर तरफ से मायूस होकर के अल्लाह की तरफ मुतवज्जे, उसको मुस्तर कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो पहला कीवर्ड है इस जुमले के अंदर या मुस्तर की तारीफ के अंदर, इस्तेलाही तारीफ, मुस्तर की इस्तेलाही तारीफ, दीन के कॉन्टेक्स में मुस्तर की तारीफ। ठीक है ना, वरना डिक्शनरी के कॉन्टेक्स्ट में मुस्तर की तारीफ क्या है कि जब कोई आपका यार मददगार खत्म हो जाए तो उस वक्त जो है ना जैसे इंसान बेचैन होता है तो उसको मुस्तर कहते हैं, जैसे स्कूल के अंदर एक बच्चा है तो उसके फ्रेंड्स जो है ना वो उसको एक बिग बुली से जो है वो बचाते फिरते थे। ठीक है ना, तो एक दिन वो बुली उसके पास आया उसको मारने के लिए और सारे फ्रेंड्स जो है ना वो भी भाग गए, या उसके फ्रेंड जो थे वो छुट्टी पर थे बीमार थे, तो उस वक्त वो कैसा मुस्तर होगा? ठीक है ना, क्योंकि कोई बचाने वाला नहीं है उसको। लेकिन दीनी इस्तेला के अंदर मुस्तर वो होगा कि जब दुनिया के सारे सहारे जो है वो उससे छूट जाएं और सिर्फ एक अल्लाह की तरफ से सहारा रह जाए ना, और फिर वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे भी हो जाए। तो इस वजह से ना मुस्तर होने के लिए दो चीजें जरूरी हैं। मुस्तर की डेफिनेशन में क्या मतलब, मुस्तर बनना हमारे लिए जरूरी है कि नहीं है? इस आयत के मुताबिक हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि अम्मन युजीबुल मुद्दर इज़ा दआहु, जब मुस्तर उसको पुकारता है ना तो वो सुनता है उसकी, कौन है जो कि उसकी सुनेगा? जब मुस्तर हर जगह से मायूस होकर के उसको पुकारता है तो अल्लाह ताला उसको सुनता है ना, दआ यानी उसको उसको जवाब देता है, उसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करता है। तो इसके लिए सबसे पहले यानी इसके लिए यानी हाउ टू क्वालिफाई टू बी अ मुस्तर, मुस्तर बने कैसे बंदा जब वो हर तरफ से मायूस हो जाए, और जिसकी आस लगी हुई है हर तरफ या कुछ तरफों में उसकी आस लगी हुई है, ये बचा लेगा मुझे या वो बचा लेगा वो मुझे, या फलाना मेरा काम कर देगा, या फलाने तरीके से जो है ना वो मेरा उल्लू सीधा हो जाएगा, है ना, फलाने रास्ते से जो है ना वो मैं अपना काम निकलवा लूंगा, फलाना रिश्तेदार मेरा आर्मी में है ना, अगर किसी पुलिस वाले ने मुझे पकड़ भी लिया तो आर्मी वाले साहब को मैं फोन कर दूंगा, है ना, पाकिस्तान में जो है वो विजिटिंग कार्ड्स लेकर के फिरते हैं अपनी जेब के अंदर, कि पुलिस वाला पता नहीं आजकल क्या होता है लेकिन 20 साल पहले तो ऐसे करते थे, ठीक है, जब हम पाकिस्तान में मुस्तकिल रहते थे तो उस वक्त, है ना, वो डिप्टी कमिश्नर साहब जो है ना वो मेरे रिश्तेदार है जी, अच्छा पुलिस वाले ने रोका ना तो वहां पर मुझे बचाने के लिए डिप्टी कमिश्नर साहब का मैं कार्ड उनको दिखा दूंगा, ये देखो ये मेरे कजन लगते हैं, ये मेरे फलाने पप्पा चाचू लगते हैं, ठीक है ना, या जो है वो कमांडर साहब का मैं दिखा दूंगा उनको कार्ड, ठीक है ना, क्योंकि पुलिस वाला जब पकड़ता है तो फिर उस वक्त जो है ना वो एक मुसीबत आई हुई होती है इंसान के ऊपर, आम इंसान के ऊपर, ठीक है। सहारे खत्म, सहारों से मायूस, नहीं कोई नहीं बचा सकता, है ना, कोई कोई नहीं आएगा मुझे बचाने के लिए। तो मुस्तर के लिए क्वालिफाई इंसान कब करता है, जब उसकी आसें खत्म हो जाएं, ठीक है ना, या वो खत्म कर दे इन आसों को। एक तो होता है कि आस खत्म हो जाए, आस खत्म कैसे हो जाती है कि जब सारे आपको ठेंगा दिखा दें, है ना, वो थम्स अप वाला ठेंगा नहीं बल्कि हमारा पाकिस्तानी वाला ठेंगा दिखाना जो है ना उसका दूसरा मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है कि जाओ आई डोंट केयर, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, तुम जाओ तो अपना खुद अपना अपना काम निकालो, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, इसको कहते हैं पाकिस्तान उर्दू के अंदर ठेंगा दिखाना, ठीक है, जब सारे लोग जो है ना वो मायूस कर दें और सारे लोग जो है वो साथ छोड़ दें, तो अब जो है ना ये हो गया मुस्तर, ये मायूस हो गया क्योंकि दूसरों ने इसको मायूस कर दिया। और एक दूसरा भी मायूस होना होता है, वो क्या होता है कि इंसान अपनी अकल शरीफ को इस्तेमाल करे, और इससे पहले कि दूसरे लोग उसको ठेंगा दिखाएं, दूसरे लोग इसको छोड़ें, ये खुद अपनी अकल से अपने आप को कन्विंस कर ले, अपने आप को यकीन दिला दे कि ये लोग मेरी मदद नहीं कर सकते, ये लोग मेरी मदद नहीं कर सकते, इनके पास कुदरत नहीं है मेरी मदद करने की, ये क्या मेरी मदद करेंगे, ये तो अपनी मदद नहीं कर सकते, नहीं ये तो अपनी मदद करने के ऊपर कादिर नहीं है, मेरी कहां से मदद करेंगे। ये भी तो एक तरीका है ना मायूस होने का, और क्या ये ज्यादा आसान तरीका है कि वो पहला वाला ज्यादा आसान तरीका था, राइट, पहला वाला तरीका था जिसको कहते हैं कि ठुड्डे मार करके किसी को मायूस करना, वो मुश्किल तरीका है ना भाई, और आसान तरीका क्या है, इससे पहले कि लोग आपको ठुड्डे मारें आप खुद जो है वो मुतमइन हो जाए कि हाँ भी नहीं कर सकता कोई मेरी मदद, हम जो है ना वो पहले रास्ते को अपनी मर्जी से पसंद करते हैं कि नहीं हम तो मानेंगे तो उसी वक्त मानेंगे जब सब हमें जो है ना वो धक्के दे देंगे ना, हम तब जाकर के मानेंगे, भाई दूसरे तरीके से मान जाओ यार, आसान तरीका नहीं है तुम्हारे लिए, दूसरे तरीके से मान जाओ, ठीक है ना, फिल्टर देम आउट बिफोर दे रिजेक्ट यू, है ना, कुरान शरीफ को पढ़ लो, कुरान की बात को मान जाओ, अल्लाह वालों की बात को मान जाओ, नबी अलैहिस्सलाम की नसीहतों को मान जाओ और लोगों से मायूस हो जाओ, ठीक है ना, लेकिन हमने तो शैतान की माननी है, हमने कुरान की तो माननी नहीं है, ठीक है ना, तो इस वजह से अफ़ बिल बातिल युमिनून, हम बातिल चीजों के ऊपर जो है ना ईमान ला करके बैठे हुए, वो मदद करेगा अमेरिका की मदद करेगा, अच्छा हम हमारी हम पाकिस्तानियों के एक और भी बड़ी बड़ी आदत है ना, हम जो है ना वो फौरन अमेरिका तक पहुंच जाते हैं, बात ही हमारी अमेरिका से शुरू होती है, ठीक है, अमेरिका क्या यार, घर के वालों की, घर वालों की बात है ना, अपने रिश्तेदारों की, अपने जो है वो दोस्त अहबाब की, अपने जो है वो अक्वेंटेंसेस है ना, अपने जान पहचान वाले, ठीक है ना, उनसे से बात शुरू करते हैं। कौन हमारी मदद कर सकता है? कोई नहीं करेगा हमारी मदद। ठीक है, तो भाई मदद करने वाला तो एक अल्लाह है। तुमको क्या पड़ी हुई है कि तुम सारी दुनिया के सामने जो है कासा गदाई फैलाते हो और जो है ना वो उल्लू बने फिर रहे हो सारी दुनिया के अंदर। ठीक है, तो दूसरा रास्ता आसान है ना भाई, किसी को कोई इख्तलाफ है इसके ऊपर कि नहीं? दूसरा रास्ता रास्ता ज्यादा मुश्किल है भाई, सीधा साधा। अभी अभी इंसान ये फैसला कर सकता है ना, कि नहीं ये चीजें मुझे, ये इंसान चाहे अमेरिका में हो, चाहे रशिया में हो, चाहे चाइना में हो, चाहे जहां कहीं भी हो, है तो वो इंसान ही ना भाई, दो हाथ दो पैर वाला। उसने टेक्नोलॉजी भी अगर बना ली है, लेकिन जिस दिन उसकी मौत आती है वो तो फिर दुनिया से चला जाता है ना। जितनी टेक्नोलॉजी बनाई हुई है सारी की सारी धरी की धरी रह जाती है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने ये किस्से कहानियां इतनी दफा क्यों हमें बयान करें? बार बार कौम आद, कौम समूद, वो फिरौन है ना, कितना बड़ा जो है वो पावरफुल था, क्या क्या उसके पास टेक्नोलॉजीज थी, क्या क्या उसने जो है वो तरक्याती काम कर दिए थे। क्या काम आए उसके ये तरक्याती काम, क्या काम आया उसका ये सब कुछ ना? तो क्या खामखा के बेवकूफी की भी कोई हद होती है? नहीं, कोई लिमिट नहीं है हमारे बेवकूफी की ना। बेवकूफ वही बात है, बेवकूफ बिल्कुल खाली अंदर से, इसी वजह से बेवकूफ, राइट? फुटबॉल की तरीके से इधर से उधर रोले चले जा रहे हैं, रोला पै गया जब भी कहते हैं पंजाबी के अंदर शायद। ठीक है, तो भाई दूसरा तो रास्ता बड़ा आसान रास्ता है, बड़ा आसान रास्ता है। ठीक है ना, इसी वक्त क्लास खत्म होने से पहले दूसरा रास्ता रास्ता में इख्तियार कर सकते हैं। ठीक है ना, अभी तौबा कर लें, अल्लाह पहले रास्ते से मुझे बता लीजिए, वरना पहला रास्ता जो है ना ये ऐसा रास्ता है कि ये हर इंसान को पहुंचेगा। पहला रास्ता जो है ना ये तो हर इंसान को पहुंचेगा ही। अगर दुनिया में आपको लोगों ने ठुड्डे नहीं भी मारे ना, बड़ी बड़े यानी पॉपुलैरिटी के साथ आप सारी जिंदगी गुजारते रहे, लेकिन जिस वक्त मौत का फरिश्ता आ जाएगा ना, तो उस वक्त तो छोड़ ही देंगे। अगर जिंदगी में नहीं भी छोड़ा, वरना जो खुशकिस्मत होते हैं तो उनको जिंदगी में लोग छोड़ देते हैं, उनके बात समझ में आ जाती है, वो फिर अल्लाह से माफी मांगते हैं, रुजू कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये भी एक बेहतर पॉसिबिलिटी है कि चलो असली तौर पर नहीं भी माना ना, तो अल्लाह ताला ने छुड़वा दिया सबसे, तो फिर जो है वो जब तने तन्हा हो गए तो माफी मांग ली है, अल्लाह क्या मैंने किया, मैं बहुत गलत किया मैंने, और इतना रुसवाई मुझे ना उठानी पड़ती अगर मैं पहली बात मान लेता। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि सारी जिंदगी जो है ना वो लोग उनको शाबाशियां देते रहते हैं, बड़े खुश हो जी, मैं तो बड़ा पॉपुलर इंसान हूँ। लेकिन वैसा बंदा भी जो है वो भी एक वक्त आएगा उसकी जिंदगी में जबकि वो मुस्तर बन जाएगा, मतलब मुस्तर बनेगा नहीं, मायूस बन जाएगा। मुस्तर तो बनता उस वक्त जबकि वो दूसरा वाला काम भी करता, मुस्तर बन जाएगा यानी मायूस, क्योंकि जब मौत का फरिश्ता आएगा ना, तो उस वक्त जो है ना फुप्पा काम आएगा, ना खालू काम आएगा, और ना जो है मामू काम आएगा, और ना अम्मी हजूर काम आएंगी, ना अब्बा हजूर काम आएंगे उस वक्त, ना बेटा काम आएगा, है ना, कोई भी इसको नहीं बचा सकेगा। और फिर जब कदर कबर में उतारेंगे तो उसके बाद कोई भी इसके साथ कबर के अंदर नहीं जाएगा, कोई भी नहीं जाएगा इसके साथ कब्र के अंदर। सब जो है वो छोड़ करके थोड़ी देर फातिहा शातिहा पढ़ेंगे और उसके बाद सब जो है वो अपने घर में जा करके, है ना, फिर खाना खाएंगे, बिरयानी खाएंगे, पुलाव खाएंगे, पानी पियेंगे, शरबत पियेंगे, है ना, फिर उसके बाद मीठी नींद सो जाएंगे। एक बंदा भी इसकी खातिर अपनी रात की नींद भी कुर्बान नहीं करेगा, राइट? हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए एक बंदा भी अपनी एक रात की नींद भी कुर्बान नहीं करेगा। अगर कोई करे, अगर कोई जागेगा भी ना, वो अपने लिए जागेगा कि मेरा कल क्या बनेगा। बीवी को अगर रात को नींद नहीं आई ना, वो भी इसलिए नहीं आएगी कि अब मेरा क्या बनेगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, आपकी वजह से नहीं कि वो कब्र में कैसा होगा, कब्र में अब क्या हो रहा होगा उसके साथ, वो बीवी इस वजह से नहीं जागेगी एक रात भी, राइट? तो भाई मायूस तो होना ही है, तो क्यों ना हम अकल से मान जाए इस बात को, आज मान जाए इस बात को, है ना, और खुद जो है ना वो अपने आप को मायूस कर दें सारी मखलूक से और एक अल्लाह के साथ जुड़ जाएं। एक अल्लाह के साथ जुड़ जाएंगे ना तौहीद खालिस, तो फिर जब मौत का फरिश्ता भी आएगा ना, तो ये अल्लाह जो है ना ये उस वक्त भी नहीं छोड़ेगा, ये उस वक्त भी नहीं साथ छोड़ेगा, है ना। कितना आसान सौदा है, कितना कामयाबी वाला सौदा है ये। ठीक है, तो मुज़दर बनने के लिए पहली चीज जो है वो मायूसी, ठीक है ना। चाहे इख्तियारी हो चाहे गैर इख्तियारी हो, मायूसी। और दूसरी चीज क्या है कि अल्लाह की तरफ रुजू भी करे, ये ना हो कि मायूसी हुई तो पता चला अपना गला ही काट लिया उसके बाद, फांसी का फंदा पंखे में लटकाया और खुद भी उसके साथ लटक गए। तो मायूस होने के बाद बंदा ये भी तो कर सकता है ना, हर तरफ से मायूस हो गया और चलो जी अपनी जान ही ले रही इसके बाद इसने। नहीं, मुस्तर तो ये उस वक्त बनेगा कि जब हर तरफ से मायूस होकर के ये अल्लाह से जुड़ेगा, अल्लाह से रुजू करेगा, तब ये मुस्तर बनेगा। और जब ये अल्लाह से रुजू करेगा, फिर अल्लाह ताला ने जवाब देना है इसको। ये नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला ने इसकी सुननी नहीं है, फिर भी नहीं सुननी। आगे सुनिए क्या जबरदस्त हजरत ने बातें लिखी है इसके ऊपर कि मुस्तर की ये तफसीर सुदई और जुनून मिस्री, सहल बिन अब्दुल्ला वगैरह से मनकूल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के लिए इन अल्फाज से दुआ करने की हिदायत फरमाई है, अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जु फला तकलनी इला नफ्सी तरफत ऐन व असलह ली शानी कुल्लहु ला इलाहा इल्ला, या अल्लाह मैं तेरी रहमत का उम्मीदवार हूं, इसलिए मुझे एक लहजे के लिए भी मेरे अपने नफ्स के हवाले ना कीजिए, यानी मुझे मेरे हवाले ना कीजिए, मेरा अपना नफ्स मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, ऐ अल्लाह मुझे मेरे सबसे बड़े दुश्मन के हवाले ना कर दीजिएगा, ठीक है ना, और आप ही मेरे सब कामों को दुरुस्त कर दीजिए। इसको कहते हैं हैंडिंग इट ओवर, हैंड्स अप, ठीक है ना, हैंड्स अप, मैंने हाथ उठा लिए है अल्लाह बस आपके हवाले सब कुछ, इसी को सुपुर्दगी कहते हैं, ठीक है, तो आप ही मेरे सब कामों को दुरुस्त कर दीजिए, आपके सिवा कोई माबूद नहीं, है ना, मैं किसी की और की बात नहीं मानूंगा जब आपकी नाफरमानी होती होगी, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, ठीक है ना, ला इलाहा इल्ला अंत का ये मतलब है, ठीक है ना। ये ऐसी दुआ है कि एक तो सबको याद करनी जरूरी है, है ना, सब याद कर लें दुआ को जिसको नहीं भी याद, और ये कि जब कोई दुआ याद ना आ रही हो या जब टाइम कुछ भी ना हो ना आपके पास कि जी दुआ बैठ करके जरा आराम से तसल्ली के साथ दुआ मांगूंगी या दुआ मांगूंगा, ये वाली दुआ कम से कम जरूर मांगी, है ना, ये ऐसी दुआ है जो कि यानी सब दुआओं को कवर कर लेती है भाई, अल्लाह के हवाले कर दिया ना और अल्लाह ताला को अपने तौहीद का यकीन दिला दिया, ला इलाहा इल्ला अंत, तो अब अल्लाह ने करना है जो करना है, अल्लाह नोस एवरीथिंग, अल्लाह नोस क्या करना है कैसे करना है, नहीं? हम बैठ के दुआ है अल्लाह आप मेरे जो है ना वो फलानी जगह जॉब लगा दीजिए, और मैं समझ रहा हूँ कि फलानी जगह जॉब लगेगी तो मेरा मसला हल हो जाएगा, या अल्लाह मेरी बेटी की फलानी जगह शादी कर दीजिए, मैं कह रहा हूँ जी फलानी जगह शादी होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा उसके लिए, हमें तो पता ही नहीं कि होगा कि नहीं होगा, राइट, हमें तो पता ही नहीं कि फलानी जॉब जो है वो हमारे लिए अच्छी है कि हमारे लिए बुरी है, लेकिन जब अल्लाह के हवाले हो गया मामला, हमने कर दिया अल्लाह के हवाले, अपनी गिरफ्त ढीली कर दी, तो अब तो अल्लाह को तो सब पता है, ठीक है ना, क्या इसके लिए बेहतर है, क्या इसके लिए खराब है, क्या किससे उसको बचाना है, किससे इसको मिलाना है, ठीक है, तो बड़ी जबरदस्त किस्म, यानी अल्लाह नबी अलैहि सलाम को हमारी तरफ से अनगिनत, है ना, जितनी अल्लाह की मखलूक है उतनी जदाए खैर अता फरमाए, जितना अल्लाह का कलाम है उतनी जदाए खैर अता फरमाए, कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने हमें कैसी कैसी दुआएं सिखाई हैं, ठीक है ना। तो मुस्तर की दुआ इखलास की बिना पर जरूर कबूल होती है। फरमाते हैं कि इमाम कुर्तुबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुस्तर की दुआ कबूल करने का जिम्मा दे दिया है, है ना, अल्लाह के ऊपर कोई चीज जिम्मे नहीं है, अल्लाह कोई जिम्मा नहीं लगा सकता, अल्लाह खुद अपने ऊपर किसी चीज को जिम्मा ले लेना तभी बस वो अल्लाह का जिम्मा बन सकता है। और इस आयत में इसका ऐलान भी फरमा दिया है कि जिसकी असल वजह यह है कि दुनिया के सब सहारों से मायूस और अलायक से मुनक़ता होकर, लाइक का लफ्ज एक्चुअली मुझसे भी मिस हो गया, क्या मतलब होगा इसका, अलक, सब सहारों से मायूस और अलायक से मुनकता होकर सिर्फ अल्लाह ताला ही को कारसाज समझकर दुआ करना सरमाया इखलास है, ठीक है, यानी यही इखलास का सरमाया, यही जो है ना वो कैपिटल है इखलास का, और अल्लाह ताला के नजदीक इखलास का बड़ा दर्जा है, वो जिस किसी बंदे से पाया जाए, जिस किसी बंदे से, वो मोमिन हो या काफिर हो, अल्लाह अकबर कबीरा, मोमिन हो या काफिर हो, काफिर का क्या मतलब, अब हमारी हमसे पूछते हैं ना कि जी मोमिन और काफिर का हम क्या जवाब देते हैं, जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है, जो अल्लाह को मानता है वो मोमिन है,
तो भाई जो दुआ कर रहा है अल्लाह ताला से वो अल्लाह को नहीं मानता, ऐसी दुआ कर रहा है खामखा में अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है। नहीं, मोमिन और काफिर की तारीफ ये नहीं है कि वो अल्लाह को मानता है ये अल्लाह को नहीं मानता, बल्कि काफिर की तारीफ क्या है और मोमिन की तारीफ क्या है कि जो नबी अलैहिस्सलाम को मानता है कि ये अल्लाह के नबी है, और जो नहीं मानता वो काफिर है। तो क्या मतलब, जो नबी को नहीं भी मानता ना वो अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है इखलास के साथ, तो अल्लाह ताला उसको भी सुनते हैं, ठीक है ना, उसकी भी सुनते हैं, ठीक है। कि वो जिस किसी बंदे से पाया जाए, वो मोमिन हो या काफिर हो, मुत्तकी हो या फासिक फाजिर, कितने ही गलीज किस्म के गुनाह क्यों ना करता हो, फासिक भी है यानी खुल करके गुनाह करने वाला, और फाजिर है बहुत ज्यादा गुनाह करने वाला, ठीक है, उसके इखलास की बरकत से उसकी तरफ रहमत हक मुतवज्जे हो जाती है। अलायत रिलेशनशिप जब आपको बताऊं तो ऊपर जो था वो अपने तमाम रिलेशनशिप से मुनकता होकर सिर्फ अल्लाह ताला ही को कारसाज समझ कर दुआ करना, ये सब आया इखलास है, ठीक है। जैसे कि हफ्ता आला ने कुफार का हाल जिक्र फरमाया है कि जब ये लोग दरिया में होते हैं और कश्ती सब तरफ से मौजों की लपेट में आ जाती है और ये गोया आंखों के सामने अपनी मौत को खड़ा देख लेते हैं, उस वक्त ये लोग पूरे इखलास के साथ अल्लाह को पुकारते हैं कि अगर हमें इस मुसीबत से आप निजात दे दें तो हम शुक्रगुजार होंगे। लेकिन यानी हम शुक्रगुजार होंगे ये नहीं कि आपने निजात दे दी, बल्कि हम अपनी बाकी जिंदगी जो है ना वो आपकी नेमतों के शुक्र में गुजारेंगे, ठीक है ना। और नेमतों में सबसे बड़ी नेमत क्या होती है, अल्लाह ताला की हिदायत की नेमत, और हिदायत का जो सबब होता है नबी, उस नेमत, उस नेमत का हम शुक्र करेंगे, यानी अब हम आपके नबी की बात मान लेंगे, लेकिन अब हम इनकार नहीं करेंगे आपके नबी का। तो ये अल्लाह ताला से वादा कर लेते हैं जब इनकी कश्ती जो है वो मझदार में फंस गई होती है, ठीक है, चाहे वो कश्ती फिजिकली कश्ती मझदार में फंसी हो, चाहे जो है वो जिंदगी के किसी और मझदार के अंदर फंसी हुई हो, ठीक है, तो उस वक्त अल्लाह ताला को पुकारते हैं। अच्छा, जो एथियस्ट होते हैं ना तो वो जोर से नहीं पुकारते, इसी वजह से लोग समझते हैं नहीं एथियस्ट है ये को थोड़ी पुकारेंगे अल्लाह ताला को, नहीं वो भी पुकारते हैं अल्लाह ताला को, क्योंकि एथियस्ट तो झूठ बोल सकता है, वो कहेगा नहीं मैंने कोई नहीं पुकारा था अल्लाह को, वो झूठ बोल सकता है, अल्लाह झूठ नहीं बोल सकते, अल्लाह ताला तो हक है, सच है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तो तुम एथियस की बात मानते हो कि अल्लाह की बात मानते हो, ठीक है ना। एथियस भी पुकारता है लेकिन चुपके से पुकारता है जो अल्लाह ताला सुनते हैं, हम नहीं सुनते उसकी चुपके से जो पुकार अल्लाह ताला की है, अल्लाह ताला तो सुनते हैं ना, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ये सब पुकारते हैं, ठीक है। एथियस जो है ना ये झूठा इंसान होता है जब वो कहता है कि मैं अल्लाह को नहीं मानता, दूसरों को बेवकूफ बना रहा होता है खाली, खुद तो उसको पता होता है कि मैं क्या करता हूँ। अच्छा, तो दाउल्लाह, तो अच्छा क्या होता है कि लेकिन जब अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल करके खुशकी पर ले आते हैं तो ये फिर शर्क में मुबतला हो जाते हैं, किसी ना किसी को अल्लाह ताला के साथ शरीक, चाहे वो और किसी को ना करे, अपने नफ्स को अल्लाह के साथ शरीक करें, लेकिन फिर से शर्क करना शुरू हो जाते हैं। दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, ठीक है ना, कि अद्दीन जो खालिस दीन है ना उसके लिए अपने आप को खालिस कर लेते हैं, अल्लाह ताला को पुकारते हैं, ठीक है, यानी तौहीद खालिस के साथ अल्लाह को पुकारते हैं। फलम्मा नजाहुम इलल बर्री, जब हम उसको उनको खुशकी की तरफ निजात दे देते हैं, इजाहुम युश्रिकून, बस फौरन, इजाहुम का मतलब एकदम अचानक से इंस्टेंटेनियसली वो क्या करते हैं, शिर्क में मुब्तला हो जाते हैं, ठीक है ना, यानी इधर जमीन पे कदम पड़ा उधर जो है वो शिर्क में मुब्तला, इजा मुफाजात या इसको कहते हैं, ठीक है। एक हदीस रसूल, हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तीन दुआएं जरूर कबूल होती हैं जिसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं, एक मजलूम की दुआ जिसके ऊपर किसी ने जुल्म किया हो, चाहे वो मजलूम जैसा भी हो लेकिन उस वक्त मजलूम है ना, दूसरे मुसाफिर की दुआ, तीसरे बाप जो अपनी औलाद के लिए बददुआ करे। कुर्तुबी ने इस हदीस को नकल करके फरमाया कि इन तीनों दुआओं में भी वही सूरत है जो दुआए मुज़फ़र में ऊपर लिखी गई है। यानी अब इस हदीस की तफसीर जो नामा कुर्तुबी ने फरमाई कि जब कोई मजलूम दुनिया के सहारों और मददगारों से मायूस होकर दफाए जुल्म के लिए अल्लाह को पुकारता है वो भी मुज़फ़र ही होता है, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा मजलूम जो कि यानी जिसके और सहारे उम्मीदें जो है वो खत्म हो चुकी होती हैं तो वो अल्लाह को पुकार होता है ना, तो वो भी मुज़फ़र के डेफिनेशन में आ जाता है। लेकिन ये मजलूम जो होता है ना ये वही होता है, ठीक है ना, जो कि यानी अल्लाह ताला ने उसको ऐसी सिचुएशन में पहुंचा दिया है कि अब बस उसके लिए अल्लाह की जगह कोई और है नहीं, ठीक है, तो वो अल्लाह को पुकार रहे हैं। यानी वही वो मुश्किल वाली सिचुएशन जो हमने आपके सामने बयान करी थी ना, दो सिचुएशन होती हैं मुस्तर बनने की, एक तो ये कि भाई आप पहुंच जाएं ऐसी हालत में कि सब आपको छोड़ दें और सिर्फ एक जालिम के हवाले हो जाएं, और दूसरी क्या होती है कि आप इंटेलेक्चुअली अपने आप को ऐसा समझना शुरू कर दें, ठीक है, कि कोई मेरी मदद नहीं कर सकता सवाए अल्लाह ताला के लिए, तो मजलूम जो है वो भी मुस्तर होता है। इसी तरह मुसाफिर हालत सफर में अपने ख्वाहिश और अजीज और हमदर्दों और गुसारों से अलग बेसहारा होता है, ठीक है, तो वो भी इसी तरह से फिर मुस्तर की डेफिनेशन में आ जाता है, यानी ऐसा मुसाफिर जो कि जिसके वाकई मोबाइल फोन के जमाने से पहले की बात हो रही है, जब मुसाफिर के पास कोई कनेक्शन का रास्ता नहीं होता था, अब तो क्रेडिट कार्ड भी होता है और मोबाइल भी होता है और सामने एटीएम की मशीन भी होती है और पीछे बैंक बैलेंस भी होता है, और माशाल्लाह मुसाफिर जो है ना वो ज्यादा मजे में होता है मुकीम से, ठीक है। तो भाई यहाँ पे उस मुसाफिर की बात नहीं हो रही, उस मुसाफिर की बात हो रही है जिसको कोई हेल्प करने वाला नहीं होता। इसी तरह बाप औलाद के लिए अपनी फितरत और पितरी शफकत की बिना पर कभी बददुआ नहीं कर सकता, बजुज इसके कि उसका दिल बिल्कुल टूट जाए और अपने आप को मुसीबत से बचाने के लिए अल्लाह को पुकारे, ठीक है ना। यानी जब औलाद जो है ना वो वाकई उसके ऊपर जुल्म करना शुरू कर दे तो उस वक्त जो है ना वो बाप फिर औलाद के खिलाफ बद्दुआ कर सकता है, वरना बाप जो है वो औलाद के खिलाफ बद्दुआ नहीं कर सकता, ठीक है। इसी वजह से माँ बाप की हम बहुत बहुत बोलते हैं, और आपने शायद नोट किया हो या आप शायद जो है वो यही समझ रहे हो कि जी हम तो गोया के माँ बाप के खिलाफ हैं और माँ बाप के जो है ना सब औलाद के दिल में ना माँ बाप की नफरत पैदा करना चाहते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है, बल्कि अल्लाह का हुक्म जो है ना वो माँ बाप के हुक्म से अफजल, इसको बार बार रिपीट कराने की जरूरत महसूस करते हैं, इस वजह से रिपीट करते रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पहले भी कह चुके हैं कि आजकल के दौर के अंदर ये सबसे बड़ा मसला इसमें बना हुआ है कि औलाद की तरबियत और तालीम जो है ना वो तौहीद वाली बिल्कुल भी नहीं हो रही होती, बल्कि दुनिया की मोहब्बत वाली हो रही होती है, तो इस वजह से याद दिलाना पड़ जाता है। लेकिन जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम ने सिखाया है, सहाबा कराम का जमाना और हमारा जमाना बड़ी उसके अंदर मुमासलत है, उस जमाने में माँ बाप का यही हाल होता था, है ना, सहाबा कराम के माँ बाप के वाकयात पढ़ें आप तो यही सब कुछ हो रहा था उस जमाने के अंदर भी, ठीक है, कि वो जो है वो अल्लाह की नाफरमानी नबी अलैहिस्सलाम के इनकार के ऊपर अपनी औलादों को पुश कर रहे होते थे, और जब नहीं मानते थे तो गुस्सा भी हो रहे हैं और बददुआएं भी दे रहे हैं और जो है वो तकलीफें भी दे रहे हैं और टॉर्चर भी कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी नबी अलैहिस्सलाम ने क्या सिखाया कि उनके साथ बदतमीजी नहीं करो, ठीक है ना। अबू बकर सिद्दीक जो है वो चांटा मार करके आ गया अपने बाप को, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं नहीं करते तो नहीं करते, ठीक है। तो यही चीज अभी भी है कि भाई आप उनके साथ उनकी बेअदबी ना करें, बेअदबी का मतलब कोई बदजबानी ना करें और चीख चिल्ला उनके साथ ना करें और उनके जो है वो खिदमत के अंदर अपनी तरफ से कोई कमी ना करें, जितना कर सकते हैं उतनी उनकी खिदमत करें उनके साथ, ठीक है। तो ये तो अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा के बाप जब माँ जब घर तशरीफ लाई थी, जब घर आई थी उनके मदीना मुनव्वरा में, तो नबी अलैहि सलाम से पूछा उन्होंने कि मैं क्या करूं, ये तो मुशरिका है, उन्होंने फरमाया कि इनके साथ आप उसमें सलूक करें, ठीक है। तो दुआए मुस्तर जो है ना वो किताब में लिखी हुई है, किताब का लिंक जो है वो मौजूद है, अगर आप क्लिक करें तो मिल जाएगा, है ना, कैसे आप बुरा शेयर करेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह क्लास के बाद देखेंगे इसकी तस्वीर खेल के ग्रुप पे खेल देंगे। जब आपको अपने सामने रखें तो फिर क्लास का सही फायदा होगा, इंशाल्लाह ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो वो लिंक से डाउनलोड करके अपने फोन के ऊपर उसको सामने खोल लिया करें। अच्छा, इमाम हदीस आजरी ने हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत से नकल किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इरशाद है कि मैं मज़लूम की दुआ को कभी रद्द नहीं करूंगा अगरचे वो किसी काफिर के मुंह से हो, ठीक है। अगर किसी मुस्तर या मजलूम या मुसाफिर वगैरह को कभी यह महसूस हो कि उसकी दुआ कबूल नहीं हुई है तो बदगुमान और मायूस ना हो, यानी अल्लाह से बदगुमान ना हो, अल्लाह से मायूस ना हो कि मेरी दुआ कबूल नहीं करता अल्लाह ताला, हालांकि मैं मुस्तर था, हालांकि मैं मुस्तर की डेफिनेशन में पूरा उतर रहा हूँ, अल्लाह से मायूस ना हो। बाज़ औक़ात दुआ कबूल तो हो जाती है मगर किसी हिकमत और मसलहत रब्बानी से उसका ज़ुहूर देर में होता है, यानी कबूलियत और ज़ुहूर ये दो अलग अलग चीजें हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ 100% कबूल हो गई थी लेकिन जहूर कब हुआ, کتنے ہزار سال کے 1500 سال کے بعد شاید جا کر کے نبی علیہ السلام کی شکل میں ظہور ہوا, اور جو ہے وہ مکہ مکرمہ کو امن کا شہر بن جانے کی شکل میں ظہور ہوا, کتنے ہزار سال کے بعد جا کر کے ظہور ہوا, قبولیت تو فوراً ہو گئی تھی. تو بھائی خلیل اللہ کی دعا کا ظہور جو ہے وہ اتنے سال کے بعد ہو رہا ہے, تو ہماری دعا کا ظہور فوراً ہو جانا چاہیے, یہ ہماری زیادہ بڑی شان ہے کوئی, ٹھیک ہے؟ تو ایسا نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ظہور دیر سے بھی ہو سکتا ہے, یا پھر وہ اپنے نفس کو ڈٹولے کہ اس کے اخلاص اور توجہ الاللہ میں کمی کوتاہی رہی ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اخلاص میں بڑے کچے ہوتے ہیں, لیکن ہم اپنے آپ کو بائی ڈیفالٹ 100% مخلص سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں, حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. ہمارے اخلاص میں ایک اچھی خاصی کمی کوتاہی ہوتی ہے, لیکن ہم اپنے ہی زعم میں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو 100% مخلصین اللہ الدین سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے؟ تو اس کا بھی اہتمام رکھنا چاہیے. یعنی پوائنٹ از, جو پوائنٹ ٹو ریمبر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی نہ کرو, ٹھیک ہے نا؟ اللہ سے بدگمانی نہ کرو. اگر بدگمانی کرنی ہے نا تو بھائی اپنے ساتھ کر لو, ٹھیک ہے نا؟ اپنے ساتھ کر لو, اللہ سے نہ کرنا, ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کو الزام نہ دینا, اللہ تعالیٰ کو یہ نہ کہنا کہ بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خامخائی ظلم کر دیا اللہ تعالیٰ نے, اور خامخائی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا حالت میں مجھے ڈال دیا اور یہ کر دیا. نہیں, اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے. اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لیں کہ بھائی میں نے کیا غلط کیا ہے, خود نظر نہیں آ رہا تو بھائی کسی سے مشورہ کر لیں, کسی سے پوچھ لیں کہ بھائی کیا مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے, آپ میری نشاندہی کروا دیں, ٹھیک ہے, کر دیں تاکہ میں اپنی اصلاح کر لوں, ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کی سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.